नामः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तो यार दिव्यध्वनियुलोकहितवमाडिदे मूरुलोकदल्लि यार कीर्तिव्याप्तवागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಜ್ ಕೆ ಸಮಾಜ ಸಾಧು ಸಮಾಧಿ ಭಾವನಾ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ साधु समाधि भावना साधु समाधि यानी सम्यक प्रकार से समाधि साधु यानी बहुत अच्छी समाधि समाधि अपनी भी अच्छी हो और दूसरे की भी अच्छी हो यह भावना रखना ये साधु समाधि है। समाधि का अर्थ होता है हर्ष विषाद से परे आत्मसत्ता की सतत अनुभूति करना, यह साधु समाधि है। किससे परे? हर्ष और विषाद से परे जो आत्मसत्ता होती है, आत्मा का इस प्रकार की जो अवस्था होती है वह आत्मसत्ता है। उस आत्मसत्ता को समाधि कहना चाहिए। मरण करते समय विकल्प बहुत आते हैं, बहुत विकल्प आते हैं, और विकल्प किस संबंधी आते हैं तो बाहरी विकल्प, आत्मा को लेकर, धर्म को लेकर, तत्वों के विषयों को लेकर, पंच परमेष्टियों के विषय को लेकर ये विचार नहीं आते। जब भी यह संसारी जीव मरा है, मरण प्राप्त किया है, आत्मा का ध्यान करते करते मरण किया है, या जहां पर यह जीवन जीता रहा, धन संपत्ति वैभव परिवार आदि को अपना समझा, वही विचार सतत रहे, वही विचार ध्यान में रखते हुए मरा है या आत्म ध्यान करते हुए मरण किया है, बाहरी परिग्रह का ही विकल्प को अंदर रखकर के मरण किया है। आवाज बाहरी विकल्प अनादि काल से इस संसारी प्राणी को घिर चुके हैं, परि आसमंतात आत्मानं ग्रन्हाति इति परिग्रह। परि चारों ओर से, आसमंतात संपूर्णतः, आत्मा को जो घेर लेता है उसका नाम परिग्रह है। इस परिग्रह को चाहे वस्तु कहो चाहे विकल्प कहो, एक ही बात है। वस्तु के आश्रय से विकल्प आते हैं, उन विकल्पों को अशुभ विकल्प कहते हैं। वस्तुओं में यह आत्मा अपने ज्ञानोपयोग को लगा करके हर्ष विषाद करता है, ये निश्चित बात है। ये संस्कार है अनादिकाल से। अनादिकाल से संस्कार हैं। इन संस्कारों को तोड़ना आवश्यक है। संस्कार मजबूत हैं, इनको तोड़ना आवश्यक है, लेकिन हमने आज तक तोड़ा नहीं, आज तक इनको जोड़ा है। तोड़ा नहीं इसलिए अकेला नहीं हुआ, जोड़ा है इसलिए जोड़ा हुआ। विकल्प भी और आत्मा भी, ये जोड़ा हो गया। जोड़ने से जोड़ा हुआ, तोड़ने से अकेला हो सकता है, जोड़ने से जोड़ा होता है। और जहां पर जोड़ा होता है वहां पर द्वंद्व पैदा होता है। बर्तन एक ही हो घर में तो आवाज नहीं करती, उसके पास चम्मच भी है, लोटा भी है, भोगाना भी है और घड़ा भी है, सब मिल करके रखा है तो वो खड़बड़ खड़बड़ करते रहते। बहुतों में शांति नहीं होती, अकेले में शांति की अनुभूति होती है। आप क्या चाहते हैं? अकेले रहने की अपेक्षा रहते हैं कि सबके बीच में? आपकी आत्मा भी एक बर्तन की तरह है, उसमें शांति चाहिए यदि, तो इसको अकेला रखना पड़ेगा क्या जोड़ना पड़ेगा? हम अकेले नहीं रह पाए अनादिकाल से, इसलिए आत्मा की स्वतंत्र सत्ता की अनुभूति हमें नहीं हुई, इसलिए समाधि मरण कभी हुआ नहीं। समाधि मरण अकेले में होता है, सबको लेकर के समाधि मरण हो नहीं सकता। और लोग मरण के काल में मरने से पहले सबको बुलाते, तुम आओ तुम आओ तुम आओ, सभी आओ, मैं मर रहा हूं। मरण के काल में किसी की जरूरत ही नहीं रहती, और अगर रहती है तो केवल उनका काम इतना ही, मैं कहीं भटक रहा हूं परिणामों से, तो मेरे परिणामों को स्थितिकरण करने के लिए तुम सहयोगी बने रहो। महाव्रती मुनियों के समाधि को पंडित मरण कहा है। इस पंडित मरण को साधने के लिए उनके लिए भी भगवान ने बहुत कुछ वर्णन करके बताया है कि एक मुनि महाराज के समाधि मरण के लिए उत्कृष्ट समाधि मरण कराने वाले 48 मुनि महाराज चाहिए। कितने? 48 मुनि महाराज आवश्यक हैं। इतने सारे? हाँ, इतने सारे मुनि महाराज वहां आवश्यक हैं उत्कृष्ट रूप से। और कम से कम तो दो मुनि महाराज तो चाहिए, दो भी नहीं मिले तो आखिर एक मुनि महाराज तो चाहिए, एक भी नहीं मिले तो आप अकेले हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्वयं के ऊपर आती है, अपने परिणामों को हम स्थिर करें। हमारे परिणाम यदि स्थिर नहीं हो सकते हैं तो बड़ी कठिनाई आती है। हीन सवनन के अवस्था में हीन सननधारी मुनियों को कहा, यानी चौथे पांचवे छठे सनन वाले मुनियों को, भक्त प्रत्याख्यान मरण है पंचम काल में, इंगिनी मरण नहीं और प्रायोपगमन मरण भी नहीं कर सकता, ये हाईएस्ट मरण है, इनके लिए सहनशीलता बहुत आवश्यक होता है। इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान, ये तीनों मरण प्रथम सहनधारी मुनियों को, द्वितीय सहनधारी मुनियों को और तृतीय सहनधारी मुनियों को होता है। ध्यान से सुन रहे हैं ना, पुस्तक नीचे रख दो, इधर ध्यान दो। समाधि के बारे में हम क्या कह रहे हैं और कैसा करना है, आपके लिए भी प्रेरणा मिलेगी। ध्यान आ गया इधर, आप लोग समाधि मरण चाहते हैं कि नहीं? तो समाधि मरण के काल में क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, पंडित पंडित मरण के लिए तो इतना करना पड़ेगा, यदि घर में भी मरण कर रहे हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा? घर में दो प्रकार के मरण हो सकते हैं श्रावक को, एक बाल मरण और एक बाल पंडित मरण, एक चौथा गुणस्थान वाला मरण और एक पंचम गुणस्थान वाला मरण। चौथा गुणस्थान वाला मरण सम्यक तो सहित मरण होता है और पंचम गुणस्थान वाला मरण सम्यक तो और प्रतिमाधारी बन करके होता है। इसमें से कौन सा चाहिए? प्रतिमाधारी बनना। प्रतिमाधारी बनने का मतलब क्या? पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इन बारह अनुव्रतों को पालन करने वाला श्रावक प्रतिमाधारी कहलाता है। यह अनुव्रत को धारण करने वाला श्रावक इन बारह अनुव्रतों को पालन करने के साथ साथ प्रथम प्रतिमा को भी धारण किया हुआ होता है तो 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करता है। ध्यान में आया? आपको क्या करना है, कैसे समाधि मरण करना है, ये बता रहे हैं। समाधि मरण चाहिए कि नहीं? तो पहले क्या चाहिए जीवन में? संयम चाहिए। संयम से पहले क्या चाहिए? सम्यक तो चाहिए। अभी तक पढ़ करके आए कि नहीं, 25 दोष क्या होते हैं सम्यक दर्शन के, पढ़ा के नहीं? रत्नगण श्रावकाचर है कि नहीं? घर में है क्या? नहीं, उसमें है। देखो, मानव धर्म एक पुस्तक है, है सबके घर में है? कितने घरों में है, हाथ उठाओ। मानव धर्म पुस्तक देखो, घर में जिनवानी नहीं और समाधि मरण चाहते हैं, देखो, और समाधि मरण की पूजा कर रहे हैं, कैसे समाधि मरण होगा? ये केवल पूजा करने से सफलता नहीं है जीवन की। घर में जिनवानी आवश्यक है, स्वाध्याय आवश्यक है, चिंतन आवश्यक है, ये कब करेंगे? साल भर में 10 दिन पूजा करने से थोड़ी काम चलने वाला है। घर में जिनवानी भी रखनी पड़ेगी। यहां बुक स्टॉल लगाया है, उधर कोई नहीं देखता, पूजा से मतलब है, जिनवाने से कोई मतलब नहीं अपने को। बुक स्टॉल काय के लिए लगाया है? आपके समाधि मरण के लिए। वहां जाते समय मानव धर्म पुस्तक है, और भी चाहिए वो तो बुला लेंगे। वो रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ घर घर में होना चाहिए। देखो घर में एक व्यवस्था बना लो, सभी लोगों से कहना है। बनाओगे? किधर देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? इधर देखो, क्या कर रहे हैं? घर में एक व्यवस्था बना लो। बनाएंगे? काय की व्यवस्था? एक जिनवानी को रखने के लिए एक कपाट, अलमारी, स्पेशल अलमारी। उस कपाट में कोई भी अन्य पुस्तकें नहीं रखेंगे, जिनवानी मात्र रखा जाएगा। कपाट ला सकते? अभी किसी को ध्यान नहीं आया, अभी सिर हिल नहीं रहे हैं। क्या महाराज बता रहे हैं? हमको तो पूजन से मतलब है। क्या बता रहे हैं? घर में एक कपाट ला सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, कितने लोग लाएंगे बताओ? पहले एक कपाट लाना है, छोटा सा कपाट जिसमें पांच छह खंड हो, चार पांच खंड हो, छोटा कपाट हो और लोहे का हो, बनी बनाई रेडीमेड मिलते हैं, या तो स्पेशल बनाओ। प्रत्येक घर में एक जिनवानी रखने के लिए कपाट होना चाहिए। हाँ? कहाँ? वो तो बहुत बड़ा है, वो घरों के लिए नहीं। हाँ, उस मॉडल का एक छोटा सा होना चाहिए। घरों में एक कपाट होना चाहिए और घर में जिनवानी को संग्रह करना चाहिए। जिनवानी को यानी शास्त्र को, शास्त्रों को संग्रह करना चाहिए। जो पढ़ने लायक प्रामाणिक शास्त्र होते हैं उन्हीं को संग्रह करना चाहिए। जनवानी को संग्रह नहीं करना, ऐसे ग्रंथ भी बहुत हैं। जिनवानी को संग्रह करना, और जिनवानी शास्त्र जो प्रामाणिक हैं वो कौन से कहाँ मिलते हैं, क्या है, हमसे पूछो। यहाँ पर बुक स्टॉल लगाया है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे शास्त्र रखे गए हैं, उनको खरीद लेना चाहिए और उसको आदर के साथ, सम्मान के साथ, विनय के साथ रखने के लिए एक अलमारी रहना चाहिए। जिनवानी जिसके घर में न हो, ऐसा कोई घर है? एक भी हमारे घर में धार्मिक पुस्तक नहीं है, धार्मिक शास्त्र ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई घर है? नहीं है तो हाथ उठाओ। हमारे घर में एक भी धार्मिक पुस्तक नहीं है। कितने लोगों के घर में नहीं है? तो घर में है, देखो शास्त्र तो घर में है लेकिन कपाट घर में नहीं है। जिनवानी को उस स्थान पर हम रखते हैं जहां पर जनरल पुस्तक रहते हैं, बच्चों के स्कूल कॉलेज के पुस्तक रहते हैं, उसके बीच में ये पुस्तक, और जहां कहीं भी जहां टीवी रहती है, टीवी के नीचे, उसके नीचे टिपाई के नीचे। जिनवानी को ऐसे स्थानों पर हर जगह रखना नहीं चाहिए, बहुत पाप लगता है। जिनवानी है वो, जहां कहीं भी रखा नहीं जाता उसको। जब पढ़ते हैं तो टेबल पर रखना चाहिए। पढ़ते समय कहां रखना? टेबल पर। पढ़ते समय टेबल पर, पढ़ने के बाद कहां रखना? नीचे जमीन पर, टीपाई के नीचे, नीचे जिनवानी और ऊपर टी, और टीपाई इसलिए नाम रखा उसका, सकाल पड़ा रहता है, सकाल फुड़ारी, सकाल। ये घर में आते कि नहीं? कितने घरों में आते हैं? सकाल सकाळ सबके घर में आते, देखो जिनवानी सबके घर में नहीं आती, सकाळ तो सबके घर में आए। सुबह उठते ही आप लोग सकाळ पढ़ते हैं, सकाळी उठकर सकाळी पढ़ते हैं, सकाळ पढ़ते हैं, लेकिन जिनवानी नहीं पढ़ते। सकाळ तो हमारा शास्त्र हो गया, दैनिक शास्त्र। जरूर हम 15 मिनट स्वाध्याय करेंगे, ये नियम ले लिया है कि सकाळ 15 मिनट पढ़ेंगे। सकाळ पढ़ते समय तो पापाश्रव होगा, पर जिनवानी 10 मिनट भी पढ़े तो पुण्याश्रव होगा, धर्म होगा। इस पूजा से श्रेष्ठ कार्य है वो जिनवानी पढ़ना। भक्तामर का पाठ कर सकते हैं, स्तुति स्तोत्र इत्यादि पाठ कर सकते हैं। ऐसे पुस्तकें घर में रखना चाहिए। मानव धर्म है जो रत्नगण श्रावकाचार्य का मराठी में अनुवाद किया है, उसको भी घर में रखना चाहिए। बहुत सारे शास्त्र हैं जो एक अलमारी लाइब्रेरी होना चाहिए, घर में एक लाइब्रेरी बनना चाहिए, जिनवानी का एक कपाट बनना चाहिए। कितने लोग कपाट बनाएंगे बताओ, हाथ उठाओ। जिनके घर में कपाट नहीं है, जिसके घर में जिनवानी रखने के लिए, वो हाथ उठाओ। किस किस के घर में कपाट नहीं है, हाथ उठाओ। सबके घर में कपाट है? नहीं है? क्या बोल रहे हैं? लकड़ी का? हाँ, लकड़ी का हो या उसका हो, कपाट है क्या नहीं तो हाथ उठाओ। किस कितने घरों में कपाट है? हाँ, बाकी के घर में क्यों नहीं है कपाट? कपाट बनाना पड़ेगा आपको। जिनवानी को जहां तहां नहीं रखना चाहिए। जिनवानी की विनय करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, और जिनवानी का अविनय करेंगे तो बुद्धि घटेगी, और मरण के काल में अपनी बुद्धि बिगड़ गई तो समाधि मरण नहीं होगा। जिनवानी का जितना विनय करेंगे, जितना संभाल संभाल करके पढ़ेंगे, जो पढ़ते समय अगर चौकी नहीं है तो ऐसा पढ़ना चाहिए, हाथ में लेकर के ऐसा, देख रहे हैं? हाँ, ऐसा नाभि के ऊपर रहना चाहिए जिनवानी, नाभि के नीचे नहीं। और यदि सामने चौकी है तो कम से कम इतनी बड़ी चौकी रहना चाहिए जो अपने पास रखी हुई है, कम से कम 10 इंच से लेकर 12 इंच तक। 10 इंच बहुत अच्छा है, 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। ये किसी के घर में नहीं होता है, जिनवानी को कोई कीमत ही नहीं देते। शास्त्र खरीदते हैं, ले जाते हैं, जहां कहीं भी रख देते हैं, कितना पाप लगता है उससे। घर में एक चौकी बनाना चाहिए। देखो ये कितने बढ़िया आज बाजार में लकड़ियां आई हैं, छोटी छोटी चौकियां 3-4 बना करके रखना चाहिए, एक पूजन करने के लिए, एक जिनवानी पढ़ने के लिए, और बहुत शास्त्र हो तो एक स्पेशल और रखने के लिए। 3-4 चौकी बनाना चाहिए घर में, और एक रूम ऐसा रखना चाहिए जहां पर केवल शास्त्र रखे जाते हैं और केवल पढ़ने के लिए मात्र उस रूम में जाया जाता है। ये खाली रूम मिलेगा क्या? नहीं, घर तो बहुत बड़े बड़े हैं। कोल्हापुर में जैन घर बहुत बड़े हैं, किसी किसी के छोटे हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोगों के घर बहुत बड़े और उसमें कमरे भी बहुत सारे हैं, है कि नहीं? एक स्पेशल कमरा, अगर बड़ा हॉल हो तो उसमें प्लाईवुड लगा करके एक जिनवानी का लाइब्रेरी रूम बनाना चाहिए। नहीं बना सकते क्या? जहां पर संसार के कार्यक्रम चलते हैं, कपड़े उतारना, कपड़े रखना, कपड़े सुखाना, सांसारिक पदार्थों को रखना, वहां पर जिनवानी के सामने नहीं होना चाहिए। देव, शास्त्र और गुरु, इन दोनों के सामने, तीनों के सामने क्या नहीं होना चाहिए? सांसारिक कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। गुरु सामने बैठे हैं तो आप कपड़े पहनते हैं क्या? कोई सांसारिक पदार्थ ला करके गुरु के सामने रखते ले जाते हैं क्या? कितने संभाल संभाल करके काम करते हैं? कोई भी सांसारिक कार्यक्रम गुरु के सामने नहीं करते हैं तो जिनवानी के सामने भी नहीं करना चाहिए। ये मोक्ष मार्ग का ज्ञान हमें प्रदान करती ये जिनवानी है। जैसे गुरु मोक्ष मार्ग बताते हैं वैसे जिनवानी भी मोक्ष मार्ग बताती है। उसको जहां कहीं नहीं रखना चाहिए। ये अवश्य व्यवस्था बनाएंगे घर में जाकर के आप सभी लोग। क्या बनाएंगे? एक रूम बनाएंगे, छोटा सा भले ही 5x5 का हो, लेकिन प्लाईवुड लगाकर एक स्पेशल रूम। प्लाईवुड से बना सकते कि नहीं? बना सकते, बनाना चाहिए। कपाट में जिनवानी रखा है और सामने सांसारिक कार्यक्रम चलते, कपड़े सुखाना, कपड़े बदलना, संसार की चीजें ले आना ले जाना, वहीं रखना, ये होता है। इससे पापाश्रव होता है, ज्ञान नहीं बढ़ता अभिनय होने से। और उसी स्थान पर मरण होगा तो कैसे मरण होगा? उसी स्थान पर मरण होगा तो विकल्प सहित मरण होगा। तो ये अवश्य काम करेंगे और जिनवाणी को संग्रह करना प्रारंभ करेंगे सभी लोग। अच्छे अच्छे शास्त्र हैं यहाँ पर, बहुत सारे शास्त्र रखे हैं। चैतन्य चंद्रोदय आचार्य श्री ने पुस्तक लिखा है, चैतन्य चंद्रोदय लिखो। स्वाध्याय करने लायक ग्रंथ कौन कौन से हैं बता रहे हैं। चैतन्य चंद्रोदय, मानव धर्म, रत्नकरंडक श्रावकाचार, यहाँ पर सभी ग्रंथ हैं। सभी लोग आज ले लेना, एक 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 ग्रंथ ले लो। स्वाध्याय करने के लिए पहले स्टॉक करो, फिर बाद में एक कपाट, जिनवानी और एक प्लाईवुड लगा करके छोटा सा रूम तैयार होना चाहिए। हा? जैन धर्म जानिए, ये भी एक ग्रंथ का नाम है। जैन धर्म जानिए, बहुत अच्छा ग्रंथ है ये। कन्नड़ में भी हो रहा है, अभी छपा नहीं, अभी प्रिंट हो रहा है। हाँ, अनंत, हाँ हाँ, प्रकाशन है उसका। अच्छा, जैन धर्म जानिए बहुत अच्छा पुस्तक है, इसको सबको पढ़ना चाहिए। प्रारंभ बेसिक है इसमें। जैन धर्म को सरलता से अगर आप समझना चाहते हैं तो ये पहला ग्रंथ स्वाध्याय करना चाहिए। क्या नाम? जैन धर्म जानिए, हिंदी में है। और जैन तत्व विद्या, जैन तत्व विद्या, जैन धर्म और दर्शन लिखो। कौन से शास्त्रों को संग्रह करें अपन स्वाध्याय के लिए, ये बताया जा रहा है। जैन धर्म और दर्शन है? जिन सरस्वती लिखो, जिन सरस्वती, सम्यक ज्ञान संस्कार सबके पास है, सम्यक ज्ञान संस्कार, छह डाला, हाँ छह डाला लिखो, छह ढाला। भगवती आराधना समाधि मरण का विषय है, उसमें श्रावक को कैसे समाधि मरण करना चाहिए अंत समय में, इसका स्वाध्याय करने के लिए भगवती आराधना लिखा है। 2000 साल पहले एक आचार्य ने लिखा है जिनका नाम शिवकोटि आचार्य। बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ है, रखना चाहिए। समाधि मरण करना चाहते हैं तो उस ग्रंथ का एक बार स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। मरण कंडिका भी ठीक है, मरण कंडिका इष्टोपदेश जिनागम प्रवेश बहुत अच्छा है, वही चल रहा है स्वाध्याय में अभी दोपहर को। जिनागम प्रवेश छोटी पुस्तक है, जिनागम प्रवेश 24 थाना शांति पथ प्रदर्शन सब ग्रंथ घर में होना चाहिए। और ये ग्रंथ देने के लिए नहीं, दान के लिए नहीं। आप लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं और उसी को दान में दे देते, ऐसा नहीं करना। दान के पुस्तक अलग होना चाहिए, स्वाध्याय के पुस्तक अलग होना चाहिए। स्वाध्याय के पुस्तक को ग्रंथों को दान में दिया नहीं जाता, वो अपने पास लाइब्रेरी में एक एक प्रति हमेशा रहना चाहिए। और दान करना हो तो छपा करके दान करो, छाप करके, या तो जहां पर मिलते हैं छपे हुए उनको इकट्ठा खरीद करके उनको सबके लिए एक एक दान में दे दो। एक आचार्य श्री का प्रवचन का ग्रंथ है जो 1975 में उन्होंने फिरोजाबाद चातुर्मास में ऐसा ही प्रवचन किया था षोडश कारण भावनाओं पर, उनको कलेक्ट करके सारभूत उन प्रवचनों को, एक घंटे के प्रवचनों को डेढ़ या दो पेज में सारभूत नोट्स तैयार करके एक पुस्तक बनी है, जो छोटे मतलब कितने पेज के लगभग, ये ग्रंथ 44 पेज की है, 45 पेज की, बहुत अच्छा सारभूत है। आप लोग नोम्पी करते हैं, इन षोडश कारण भावनाओं का अर्थ नहीं समझते, उस पूजन पुस्तक के साथ इसको भी रखना चाहिए। लेकिन यह छपा नहीं, 1975 में एक बार छपा और बाद में छपा नहीं। इसका नाम है प्रवचनामृत ग्रंथ है, आचार्य श्री की वाणी है इसमें। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता, ये जो पूजा कर रहे हैं ना सुबह, इनका पूरा अर्थ इसमें है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, सारभूत विषय। तो इसको छपा करके कोई भी शास्त्र दान कर सकता है, कोई दाता इसको छपा करके दान करना चाहे तो कर सकते हैं। जीव सिद्धांत चर्चा, हाँ ये भी घर घर में होना चाहिए। अभी जो सुबह क्लास चल रही है ना रोज, उसका नाम जीव सिद्धांत चर्चा, इसको घर घर में रख करके स्वाध्याय करना चाहिए। बहुत विषय है उसमें, चार्ट्स हैं। इसका स्वाध्याय अभी दशलक्षण पूर्ण होने के बाद पुनः प्रारंभ होना है। द्रव्य संग्रह लिखो, इन ग्रंथों को संग्रह करें, सभी लोग ग्रंथ इन ग्रंथों को संग्रह करें अपने कपाट में। एक लाइब्रेरी बनना चाहिए कि नहीं घर में? जिनवाणी का संग्रह होगा तो जिनवाणी हमारा कल्याण करेगी, जिनवाणी माँ हमारे घर में रहेगी तो माँ के बिना तो कल्याण नहीं हो सकता। वो सबको मिल गया है, घर घर में है वो तो। और नहीं, इष्टोपदेश, करना है, चरणान योग का ग्रंथ है। विषय छूट रहा है, समाधि मरण का, तो कुछ तो ग्रंथ लिखो जो लाना है, ये महत्वपूर्ण विषय है। विषय छूट जाए थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, लेकिन लिखो क्या क्या संग्रह करना, कौन कौन से ग्रंथ खरीदना, बहुत महत्वपूर्ण विषय। हाँ आपके पास लिस्ट है, सबके पास नहीं है ना, कैसे करें, किस किस को भेजेंगे? 10 लक्षण के बाद अपने अपने घर जाएंगे, किस किस घर जाकर के दोगे? हाँ, लिख दिया तो इतना तो कम से कम इतने ग्रंथ आप इकट्ठे करें, कम से कम 100-200 ग्रंथ घर में होना चाहिए, जिनवाणी को खरीदने की एक शौक होना चाहिए। सकाल खरीदने का शौक है और जिनवाणी खरीदने का शौक नहीं है? क्या प्रकाशन, प्रकाशन कौन सा होना चाहिए छपाने के लिए? हाँ, उसका हम बाद में बताएंगे आपको, कौन सा ग्रंथ सही है और कहां से प्रकाशित सही गलत, ये सब बताएंगे। पहले इतना ग्रंथ अलमारी एक घर में बनाना ही निश्चित कर लो अपने अपने मन में, सभी लोग करेंगे ना, शास्त्र संग्रह करेंगे ना। हाँ, यहाँ पर जो कपाट है वो खाली होना चाहिए आज। बहुत सारे शास्त्र रखे, दो दिन से हम देख रहे हैं ज्यों के त्यों रखे हैं, कोई शास्त्र खरीदता ही नहीं। बस 10 लक्षण आ गए, 10 दिन पूजन कर लिया तो छुट्टी, हम जैन बन गए, ऐसा नहीं है। स्वाध्याय करना भी श्रावक का षटकर्म में से एक कर्म है। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, क्या कर रहे हैं? पूजन एक ही कर रहे हैं, देव पूजा एक ही हो गई, वो भी साल भर में एक बार। गुरुपास्ती, गुरुपास्ती भी कहां करते अपन, कभी दान नहीं देते, गुरुपास्ती नहीं। स्वाध्याय, स्वाध्याय तो है ही नहीं। तो षट कर्म से रहित रहेंगे तो उसको हम श्रावक कैसे कहेंगे? हाँ? डिस्काउंट छोड़ो, डिस्काउंट की बात मत करो, जिनवाणी का व्यवसाय व्यापार नहीं होना चाहिए, दान होना चाहिए, परस्पर में दान दो। मैं 1000 प्रति छपाता हूँ, सबको फ्री में दान देता हूँ। जिनवाणी का व्यवसाय करना वस्तुतः गलत है, जाना चाहिए दान देने से। लोगों के घर में 1000 प्रति कोई भी छपाने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा और घर घर में फ्री में जाएगा। वो अपने को जिनवाणी खरीदना नहीं, दान देना, खरीद करके दान दे दो कोई बात नहीं, लेकिन दाता होना चाहिए। दाता के माध्यम से घर घर जिनवाणी शास्त्र जाना चाहिए, कि ऐसे दाता नहीं है कि हम 100 प्रति खरीदेंगे और सबको दान के रूप में देंगे और दूसरा जो ले रहा है वो भी ये नियम ले लें कि मैं भी 100 प्रति खरीद लूंगा और सबको फ्री में दे दूंगा। ये क्यों नहीं चल सकता? ये तो होना ही चाहिए। जहां पर छपते हैं, छपने के लिए खर्चा आता है उनको, छप करके वो प्रभावना कर रहे हैं, वहां से ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दाता उन शास्त्रों को सबके लिए हम दान के रूप में देंगे कर करके सबको एक एक प्रति देगा तो कितना बड़ा पुण्य का काम है ये। एक शास्त्र खरीदते हैं तो कम से कम 60-70 साल तक उसकी उम्र होती है कागज की, और 70 साल तक आपका शास्त्र पढ़ेगा, कल्याण करेगा, ये पुण्य किसको जाएगा? दाता को ही जाता है, और 70 साल तक पुण्य कमाता रहता है वो। एक दिन दान देगा, 100 प्रति देगा, तो 100 जगह जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो 70 साल तक पुण्य कमाता रहा। इसलिए शास्त्र दान सबसे बड़ा दान है। शास्त्र दान ही मत करो, किंतु आजकल जो ये प्रवचन के वो सीढ़ियां निकल रही हैं, इन सीढ़ियों को भी दान में दे तो ये भी शास्त्र दान के रूप में ही होता है। और घर में केवल शास्त्र की ही अलमारी नहीं बनाना, उसके साथ सीढ़ियों को भी संग्रह करना चाहिए। सीढ़ी प्रवचन की सीढ़ी, आचार्य श्री की सीढ़ियां निकली हैं, अच्छे अच्छे मुनियों की जो प्रवचन हैं, उनका संग्रह करूं, उनको सतत सुनो, सुनने से मन की निर्मलता बढ़ती है, मन की पवित्रता बढ़ती है। पूजन में बैठने से जैसे आज इतने मन पवित्र है ना, उतना ही मन पवित्र होता है प्रवचन सुनने से भी। एकाग्र होकर के एक घंटे बैठ करके आपने यदि प्रवचन भी सुना तो वो भी स्वाध्याय की कोटि में आता है। षटकर्म है ना, हम छह कर्मों को नित्य करेंगे, ऐसा जिसका नियम है वह एक घंटा बैठ करके प्रवचन की सीढ़ी भी सुनेगा तो स्वाध्याय की कोटि में आ गया। ये जरूरी नहीं कि शास्त्र खोल करके पढ़ लिया तो ही स्वाध्याय है, ऐसा नहीं। जब हम अब सीढ़ी नहीं सुनते तो उस दिन पढ़ लिया तो वो भी स्वाध्याय में आता है। स्वाध्याय दो तरह से करो, सुनने से और पढ़ने से। सुन करके भी स्वाध्याय करना और पढ़ करके भी स्वाध्याय करना। विषय आगे का लेते, कौन सी भावना आज? साधु समाधि भावना। साधु यानी सम्यक, साधु यानी सम्यक, यथार्थ, यथार्थ रूप से अपनी समाधि हो। यथार्थ समाधि कैसी होती है? राग द्वेष से मुक्त, हर्ष विषाद से मुक्त, हर्ष और विवाद से परे जो आत्म सत्ता है, आत्मा की निर्मल अवस्था है, उस अवस्था में जा करके प्राणों को विसर्जित करना। यानी अंतिम क्षण में हम जब रहते हैं, मरण के अंतिम क्षण में कैसे रहें अपने परिणाम? निर्विकल्प रहे। कैसे निर्विकल्प? राग द्वेष हर्ष विषाद मोह ये कुछ भी अपने पास न हो। मरण करते समय सारी जिम्मेदारी घर वालों को सौंप देना चाहिए, अपना कुछ भी नहीं है। आते समय हम अकेले आए थे, जाते समय अकेले ही जाना है, अकेला जाना ही वास्तविक समाधि मरण है। जैसे कुछ भी नहीं लाए थे, कुछ भी ले जा नहीं सकते, किंतु यदि मोह रख करके मरण करेंगे तो नुकसान होगा, और मोह छोड़ करके मरण करेंगे तो फायदा होगा। तो मरण काल में तो कम से कम इनको छोड़ने का हमें प्रयत्न करना ही चाहिए, उससे पहले प्रयत्न करना चाहिए। क्या करके? प्रतिमा धारण करके, प्रतिमाओं को धारण करना चाहिए, 12 अनुव्रतों का पालन करना चाहिए। ये 12 अनुव्रत हमको परिग्रह से मुक्त कराते, संतोष भाव दिलाते, हमको संयमी बनाते और हमारा जीवन का उद्धार होता है। अपने आत्म कल्याण के लिए अवश्य ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 12 अनुव्रतों का पालन। ये 12 अनुव्रत क्या होते हैं एक दिन अवश्य हम समझाएंगे, प्रतिमाधारी बनने के बाद क्या क्या करना। कब समझाऊं? अभी समझाएं। तो प्रतिमा लेंगे? देखो, लेंगे कहने से हंसने लगे, इन्हें लेना नहीं है लगता है। प्रतिमा लेंगे क्या? हाँ, प्रतिमा लेंगे, भावना करेंगे, विचार करेंगे। सरल ही होते हैं प्रतिमा, कोई कठिन नहीं होते, बहुत सरल होते हैं। श्रावकों को घर में रहते हुए पालन कर सकते हैं ऐसा जब रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में कहा है, तो फिर घर में रहते हुए क्या कठिन पड़ेंगे? वो नहीं, सरल ही पड़ेंगे। क्या क्या करना पड़ता है ये अवश्य समझाएंगे। पहला, लिखना नहीं, सुनना। लिखा हुआ तो आप रत्नगढ़ श्रावकाचार्य मानव धर्म में है, उसको बाद में पढ़ लेना, सुनना एकाग्रता से। पहला क्या करना पड़ता है, पहला तो मद्य मांस मधु का त्याग। मध्य मांस मधु का त्याग, आठ मूल गुणों को पहले धारण करना पड़ता है। ये प्रतिमा का नहीं बता रहा हूं, प्रतिमा से पहले क्या करना पड़ता है, उसकी भूमिका क्या है, इसको बता रहा हूं। मध्य मांस मधु का त्याग करना हो जाएगा। हाँ, कितने लोगों को होगा ये मध्य मांस मधु का त्याग? समझ में आया कि नहीं? हिंदी क्या त्याग करना है? मध्य मांस मधु का त्याग करना। कितने लोग करेंगे? जो नहीं करेंगे वो तो जैन ही नहीं है। जोर से हाथ से तो उठाओ, कौन कौन करेंगे? मध्य मांस मधु का त्याग, इतना पक्का? पक्का। वो बाद में बताएंगे, पहले तो स्थूल रूप से त्याग करो। दवाई फिर इतने मैं हाथी की बात कर रहा हूँ, आप पूंछ के तरफ लक्ष्य मत ले जाओ। पहले तो कभी भी हम सीधा मद्य नहीं पियेंगे, शराब, मद्य यानी शराब, दारू, कलकाय, दारू नहीं पियेंगे और मद नहीं खाएंगे। मद नहीं खाएंगे, मद यानी मद, हाँ, जेन तुप्पा कन्नड़ दली, हाँ, ये नहीं खाएंगे। मांस प्राणियों के शरीर से निकलता है और उनकी हत्या करके मांस निकाल करके परोसते हैं, तो उसको कैसे खाएं? पंचेंद्रिय जीव की हत्या है वो, मांस किससे बनता है? पंचेंद्रिय जीव संगी पंचेंद्रिय है, उससे मांस आता है। मुर्गी काटते हैं, बकरी काटते हैं। आजकल ये शोक हो गया है, ये मत समझना कि जैन समाज में लोग पवित्र हैं, रास्ता छोड़ चुके हैं वो भी। ये जैन कुल की कोटी में नहीं आते ये लोग, जो इसका सेवन करते हैं वो जैन नहीं कहला सकते। भले ही जन्म उनका इसमें हुआ हो, जन्म लेने से जैन नहीं कहलाता, जैन घर में जन्म लेने से जैन नहीं कहलाता। जैन कुल की एक मर्यादा होती है, मर्यादा में ये आठ मूल गुण पालन किए जाते हैं। तीन मकार हैं, मध्य मांस मधु का त्याग, और पांच स्थूल अनुव्रत, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह प्रमाण अनुव्रत। परिग्रह प्रमाण क्या? परिग्रह प्रमाण, हम अपने पुण्य के उदय से आने वाले परिग्रह में संतुष्ट रहेंगे। हम चोरी जारी करके, डाका डालकर, पाप का कार्य करके संग्रह नहीं करेंगे। इस प्रकार जो संकल्प होता है, ये स्थूल चोरी, स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ, स्थूल पाप से बचने के लिए ये सब कुछ किया जाता है, ये स्थूल पाप कहलाते हैं। एक व्यक्ति चोरी ही अपने जीवन में बना लेता है, चोरी ही उनका व्यवसाय है, तो ये छोटा पाप है क्या बड़ा पाप? अन्याय से दूसरे के संपत्ति को हड़प करके लाना, अपना जीवन बना लेना, ये स्थूल पाप कहलाता है। ऐसे स्थूल पाप से अपना जीवन नहीं जिएंगे, अपनी कमाई से कमाएंगे, अपनी मेहनत से कमाएंगे, अपने व्यवसाय से कमाएंगे, खेती करेंगे, व्यवसाय करेंगे, उद्योग करेंगे, सर्विस करेंगे और कमाएंगे। तो अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन चोरी का नहीं माना जाता, ये पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन है। तो ऐसा कमाना ये मूल गुण में आता है, और चोरी ही जिनका जीवन बन जाए तो वो मूल गुण के भीतर नहीं है, उस व्यक्ति के पास मानवीयता भी नहीं रहेगी। चोरी करने वाला मानवीय गुणों को धारण नहीं करता। व्यवसाय से कार्य करने वाला, व्यवसाय से कमाने वाला, वह मानव होता है, उसमें मानवीयता होती है, दूसरे की चीज को हरण नहीं करता। पांच अनुव्रत पालन करना, ये पहला होना चाहिए। ये तो सरल है। देखो, अहिंसा के मामले में, अहिंसा अनुव्रत के मामले में पहला अपने को क्या करना चाहिए? चमड़े के वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना। ये हो सकता है तो ये अहिंसा अनुव्रत है। और क्या करना? करना नहीं तो रेशमी के वस्त्र को पहनना नहीं, क्योंकि एक रेशमी साड़ी तैयार करने के लिए कितने जीवों की हत्या करनी पड़ती है? हजारों, 6000 से भी ज्यादा जीव उसमें मरते हैं। 6000 वो डालते हैं जो कवच रहता है, उसको कवच सहित गर्म पानी में डाला जाता है, उबाला जाता है, वो सभी जीव मरते हैं। फिर वो कवच ढीला पड़ जाता है, उससे रेशा निकलते, रेशम के धागे निकलते। कितना बड़ा पाप है इस साड़ी को पहनने में। आपको दया आती है? हाँ, जिनवानी के साथ उसको रखा है। अब देखो कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा अविवेक है, हम कुछ जानते ही नहीं है पाप क्या है। देखो, रेशम की साड़ी वस्त्र जो भी हैं घर से अलग कर दो। जब तक घर में ये वस्त्र रहेंगे वो जैन घर नहीं है, वो पवित्र घर नहीं है, वो निर्मल घर नहीं है, शुद्ध घर नहीं है। उस घर में हमेशा सूतक है, सूतक। सूतक किसको कहते हैं? जिसके घर में स्मशान हो वो सूतक का घर। स्मशान में हमेशा सूतक रहता है। मरे हुए जीवों के शरीर से जिस साड़ी को बनाया गया है वो कलेवर है उसका, उसको कैसे रखते हैं घर में? सोच में पड़ गए कैसे निकाले उनको। सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो कल तक चिंतन हो जाएगा क्या पूरा? कल तक चिंतन पूरा कर लो और कल के दिन विसर्जन करने का नियम ले लो। घर में कौन से वस्त्र नहीं रखना? रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र के ऊपर एक प्रवचन हुआ था 2007 में वड़गांव में। लोगों को सब पाप से भय उत्पन्न हो गया। इतना पाप हमने अज्ञान अवस्था में किया है ये मालूम ही नहीं था। महाराज, आपने प्रवचन करके, ज्ञान दे करके हमारी आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। सीढ़ी, हाँ, मानसथम मंदिर में भी हुआ था। उस समय में भी कुछ लोगों ने छोड़ा था, बहुत लोगों ने छोड़ा था, लेकिन नए नए लोग अभी जुड़े हैं तो वो भी सुने। प्रवचन हुआ वहां तो एक के घर में कितने साड़ी निकली मालूम? 60 साड़ी निकली, रेशम की साड़ी 60। फिर उनको मन में आया 60 साड़ी यदि घर में रखते हैं तो नरक जाएंगे, बाहर निकालते हैं तो स्वर्ग जाएंगे। तो साड़ी को महत्व दें क्या? स्वर्ग को महत्व दें, समाधि मरण को महत्व दें? समाधि मरण, साड़ी को रखते रखते कभी आप समाधि मरण नहीं कर सकेंगे, निश्चित बात है। वो जीव सम्यक दृष्टि भी नहीं है जो रेशम की साड़ी पहनता है और घर में रखता है या दूसरे को देता है। इसको दूसरे के लिए देना भी नहीं चाहिए, रखना भी नहीं चाहिए और पहनना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने 60 साड़ी बोरी में भर करके ला करके दे दिया। तो कौन ले गए उसको? कोई नहीं ले गया। सभी कहने लगे मैं क्यों ले, मैं नरक जाऊंगा तो। कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। आखिर क्या करना पड़ा उसको, उनको कैंची से काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया और गड्ढा निकाल करके गड्ढे में ढाक दिया। क्या किस काम के वो, एक दिन भी पहनना पाप है, एक घंटे एक सेकंड के लिए भी पहनते हैं तो 60,000 जीवों को मारने का पाप लगता। पहन लो उसको, कैसे पहनेंगे, 60,000 कीड़ों को मारने का पाप एक सेकंड में लगता है, और प्रति सेकंड आपने पहना, एक दिन पोरा पहना तो कितना पाप, 60,000 प्रति सेकंड। जब तक उसका त्याग नहीं होता तब तक पाप लगता ही है। कितने लोगों के घर में अभी साड़ियां हैं, जरा हाथ उठाएंगे, हाथ भारी हो गए, यानी बहुत हैं, क्योंकि करोड़पतियों के घर में तो बहुत होते हैं। शौकीन रहते हैं हम धनवान हैं, हम करोड़पति हैं, हम ऐसे वैसे साड़ी नहीं पहनते, ऐसे वैसे साड़ी हम नहीं खरीदते, हम उच्च महंगे महंगे साड़ी खरीदते हैं और खरीदने में हमारा शौक रहता है, महंगी साड़ी खरीदने का शौक रहता है। सुनो, रहता है कि नहीं, घर में धन अधिक होने से महंगे साड़ी खरीदते हैं और ये साड़ियां सबसे ज्यादा महंगी हैं, और जितनी महंगी बाहर है उतना ही महंगा आत्मा महंगा पड़ जाता है स्वर्ग जाने में, और नरक जाने में सरल पड़ जाता है। तो देखो, अज्ञान अवस्था में आपने कोई बात नहीं उसको खरीदा है, पहना है, तो उस पाप कर्म की निर्जरा होनी चाहिए कि नहीं। सुनो, बातचीत मत करो, पाप कर्म की निर्जरा करोगी कि नहीं, करना है कि नहीं, अज्ञान अवस्था में किया हुआ पाप बंधा है कि नहीं, उसको बाहर निकालना है कि नहीं। पाप को यदि बाहर निकालना चाहते हैं तो एक उपाय, अज्ञान अवस्था में हे भगवान, हाथ जोड़ो भगवान से और कहो अज्ञान अवस्था में, हे भगवान मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, सदगुरु ने मुझे उपदेश दिया, पाप से बचाया और मैंने ऐसे साड़ियों का मोह त्यागा, उसके प्रति जो हमारा मूर्छा भाव था, उसके प्रति जो हमारा मोह भाव था, उसको त्याग करके मैंने संकल्प ले लिया कि इनको हम पहनेंगे नहीं, न किसी को देंगे न पहनेंगे, दूसरे को देने में भी पाप है। क्यों, आप पाप समझ रहे हैं और दूसरे को दे रहे हैं तो वो पहनेगा क्या नहीं, तो पहनने के लिए तुम्हारे अनुमोदना हो गई क्या नहीं, तो उसको भी पाप में, पाप के बंधन में पड़ना पड़ेगा ना। दोनों पाप हैं, देना भी पाप और लेना भी पाप। क्या करो, एक कैंची ले लो, उसको टुकड़े टुकड़े कर दो और किसी को बताओ मत ऐसा कर रहा हूँ, मैं अपने मूर्छा भाव को तोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, और इसको एक गड्ढे में, हाँ आपके घर के बाहर ऐसे बहुत जगह है ना, उधर एक गड्ढा निकालो, उसमें डाल दो और मिट्टी ढाक दो उसके ऊपर, बस हो गया, पाप गड्ढे में गया, हम स्वर्ग में गए। साड़ी को जाने दो जहां जाता है, उससे मोह नहीं। तो ये चीज नहीं पहनना। क्या, पहली बात, एक चमड़े के वस्तुओं का प्रयोग अपने जीवन में नहीं करना, और रेशम की साड़ी नहीं पहनना। कितने घरों में है रेशम की साड़ी, देखो, नहीं नहीं पक्के जैन घर हैं, एक एक भी साड़ी नहीं किसी के घर में, एक भी हाथ नहीं उठा रहा है, देखो ना, है कि नहीं, फिर हाथ से उठाओ, क्या बात है, ईमानदारी से हाथ उठाओ, है ना, है ऐसी क्या बात है, संकोच हो रहा है क्या, हाथ उठाओ, कितने घरों में है, तो छोड़ने के भाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यदि छोड़ने के भाव आ रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं निश्चित रूप से, क्योंकि छोड़ने के भाव उसी को आते हैं जिनको नरक नहीं जाना है या नरकायु का नरक गति का बंद नहीं हुआ है, उसको नियम से छोड़ने के भाव आएंगे। और जिसको नरक गति का बंद हुआ ही है तो उसको दया नहीं आती। समझ में आया क्या बता रहे हैं? दया नहीं आएगी, नरक गति का बंद हुआ तो पाप से व्यक्ति डरता नहीं, न शराब पीने में डरेगा, न मांस खाने में डरेगा, डर ही नहीं लगता उनको। क्यों? टिकट खरीदा है, नीचे का टिकट खरीदा है, तो नीचे के टिकट खरीदने के लिए परिणाम भी ऐसे कठोर बनते हैं, ऐसे कठोर बनते हैं कि नरक के योग्य पाप को फिर कमाएंगे कैसे? तो वो कर्म कहता है तुमको कमाना ही पड़ेगा, अभी तक कमाया है थोड़ा और कमाना पड़ेगा, क्योंकि पहला नरक नहीं दूसरे नरक में जाने की तैयारी करना पड़ेगा, आयु तो उतना बांध लिया है। तो ऐसा भयंकर पाप जो बंधते हैं, कम से कम उनको छोड़ना आठ मूल गुण कहलाता। ये प्रतिमा नहीं, प्रतिमा का बाद में बता दूंगा, वो सरल है, इससे सरल है वो। लेकिन कठिन क्या है, जो बड़े बड़े पाप होते हैं ना, उससे हमारा मूर्छा भाव नहीं छूटता, मोह भाव नहीं छूटता। तो एक छोड़ना चमड़े के वस्तुएं, बैग है, फर्श है, बेल्ट है, इन वस्तुओं का उपयोग अपने जीवन में नहीं करना। तो चमड़े के वस्तुओं को प्रयोग में नहीं लाएंगे, इसके लिए हाथ उठाओगे? उठाओ। चमड़े के वस्तुओं को प्रयोग में नहीं लाएंगे, तो ठीक ये हो गया। अब रेशम के वस्तुओं को भी हम हटाएंगे, इसके लिए हाथ उठाओगे? रेशम के वस्तुओं को भी हम हटाएंगे, इसके लिए हाथ उठाएंगे? हाँ, तो ये क्यों संकोच क्यों हो रहा है? बहुत प्यार है वस्त्रों से, साड़ी से। ये भगवान के सामने नहीं लाना उनको, अपवित्र हो जाएगा, ये भी स्मशान बन जाएगा, ऐसा नहीं। पवित्र जगह है, रखना हो तो उधर किनारे पर रखो, कहीं भी बाहर, जहाँ चप्पल उतारते हैं ना वहाँ रख दो, बोरी में भर करके वहाँ रख दो उसको। देखो, हम एक बात कहते हैं आप लोगों से, आप लोग जैन हैं, जैन कुलाचार आठ मूल गुण कहलाते हैं, सुनना, आठ मूल गुण जैन कुलाचार के कहलाते हैं। इसमें क्या क्या नहीं करना पड़ता है? बड़े बड़े पाप नहीं करने पड़ते, बड़े पाप नहीं करना, छोटे पाप कोई छुड़ाता भी नहीं है और छोड़ भी नहीं सकते। जो अत्यंत बड़े पाप हैं उनको नहीं करना। आप लोगों को शोक है, आप उच्च कुलीन हैं, साहूकार हैं, करोड़पति हैं, इसलिए सोचते हैं अपने बेटी को, हाँ रेशम की साड़ी महंगा और फर्स्ट क्लास, ऐसा सोचते हैं। ये गलत है, ये अज्ञान है। जो अन्य साड़ियां हैं ना, उसमें जो स्टैंडर्ड है वो ढूंढो ना, वो निकालो। रेशम का ही क्यों ले रहे हैं आप? क्या अपने बेटी को नरक में डाल रहे हैं? बेटी क्या नरक में जाए? शादी कर रहे हैं तो शादी के टाइम में रेशम की साड़ी को ही निकाला जाता है, उधर ही क्यों? गलत है ये, शोक ठीक नहीं है, अज्ञान है ये। ये आपको संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कभी भी रेशम की साड़ी खरीद करके नहीं देंगे ये, और चमड़े के जूते भी खरीद करके किसी को हम नहीं देंगे, और अपन भी नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार का नियम बना लो। बनाया? क्या केवल सुन ही रहे हैं? हाथ जोड़ो भगवान से, ये पाप तो छूट जाए, बड़े पाप। हे भगवान, बताओ, बोलो, हे भगवान, हमने अज्ञान अवस्था में बहुत बड़ा पाप किया है, मैं सद्गुरु के उपदेश को सुनकर, भगवान की दिव्य ध्वनि को गुरु के द्वारा सुनकर, मैंने अपना आत्म कल्याण करने का, पाप को त्यागने का संकल्प लिया है, इन पंच पापों को मैं स्वयं न करूंगा, न कराऊंगा, न करने के लिए अनुमोद न करूंगा। हाँ, दो के मामले में ये संकल्प आपने किया, और कौन कौन से बड़े पाप हैं सुन लेना थोड़ा सा। कोई जीव अपने पुण्य के उदय से जैन कुल में पैदा होने के लिए आ गया, जन्म लेने के लिए, और उसके संबंध में हम उल्टे सीधे सोचने लगते हैं, हमको लड़का नहीं चाहिए था, लड़की चाहिए थी, तो उसके संबंध में कितना बड़ा पाप के विचार आते। लड़का चाहिए तो लड़की, लड़की चाहिए तो लड़का, इस प्रकार जो इष्ट है उस इष्ट को हम विचार करते, बहुत गलत है। क्या घर में तीन चार लोग जन्म लिए, ज्यादा हो गए, तो आपको कोई तकलीफ होती है? नहीं होना चाहिए तकलीफ। तीन चार संतान अधिक हो जाते हैं तो एक दो संतान हमको दे दो, हम ले जाएंगे, उसको ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जो बचा है उसको मांगते हैं तो हमारा, हम नहीं दे सकते उसको, ये कैसी परिणति है? देखो कैसे विचार, कैसी सोच, ये विवेक नहीं है। आज घर घर में कितनी संतान होनी चाहिए? हाँ, छोटे बच्चों को भी मालूम है ये कितने होना चाहिए। एक छोटा बच्चा बोल रहा है दो। देखो ये होना नहीं चाहिए। जीव जो आता है उसके संबंध में गलत विचार मन में आना भी नरकायु के बंध के कारण बनेगा। पंचेंद्रिय मनुष्य की हत्या है ये, अपने संतान की हत्या है। फिर ऐसे पाप करने से अपने को भावी में क्या होना पड़ता है मालूम? हम संतानहीन रहेंगे, या तो हम कहीं जहां पर जन्म ले रहे हैं वहां पर हमको भी कोई ना कोई आकर के मारेगा, और जन्म के साथ ही हम मर जाएंगे। इस प्रकार के बड़े बड़े पाप कर्म बंधते हैं। ये पाप कर्म न करना चाहिए, स्वयं न करवाना चाहिए, ये नियम लेना चाहिए। हम करेंगे भी नहीं ऐसे पाप को और करवाएंगे भी नहीं, करवाएंगे नहीं। करवाना बहुत होता है करने की अपेक्षा, बड़े लोग भी शामिल हो जाते हैं, घर के सभी सदस्य उसमें शामिल होकर के ये पाप करने लगते हैं, तो ये नहीं होना। इसके लिए संकल्प होना चाहिए बड़ा पाप है ये होगा। हाथ उठाओ। हाँ? नहीं होगा, अनुमोदना देना है क्या? हंस रहे हैं वो अभी, हमको तो देना पड़ता है किसी को। मनुष्य की हत्या के लिए आप अनुमोदना करेंगे? हाँ? तो हाथ उठाओ। ये नहीं करेंगे, अनुमोदना भी नहीं करेंगे और स्वयं भी नहीं करेंगे। कृतकारित अनुमोदना से दूर रहना इस पाप से। और एक बात है, आप जब सुबह उठते ही पेस्ट करते हैं तो उस वह पेस्ट कैसा तैयार होता है आपको मालूम नहीं है। एक कोलगेट होता है सफेद, ट्यूब में भरा हुआ आता है, उसका प्रयोग क्या आप लोग करते हैं? यदि कोई करते हो तो सुन लें, वह कत्ल खाने में जो पशु कटते हैं ना, उसका एक भी मटेरियल वेस्ट नहीं होता। चमड़े का उपयोग होता है, खून का उपयोग होता है, हड्डी का उपयोग होता है, मांस का उपयोग होता है, प्रत्येक वस्तु का उपयोग वहां पर होता है। सींग का उपयोग होता है, दांतों का उपयोग होता है, हड्डियों का उपयोग होता है। इन हड्डियों को ले जाकर के कत्ल खाने से उसको पीसकर पाउडर बनाते हैं और पाउडर को कॉलगेट में डालकर उसमें और कुछ वस्तुएं डालकर पेस्ट बनाया जाता है। ये कॉलगेट हड्डी का पाउडर है। क्या अच्छा लगेगा सुबह उठते ही पशुओं की हड्डी अपने मुंह में आ जाए और सुबह उठते ही हड्डी अपने मुंह में आ गई तो हमारा मुंह स्मशान बन गया। जबकि हम स्मशान में जाकर के एक दिन कोई मरण किया, स्मशान होकर के आ गए तो आते ही अपन सूतक लग गया समझते हैं। स्मशान में जाकर आने से क्या होता है? स्नान करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? सूतक लग गया, वो तात्कालीन सूतक है। स्नान करते हैं, हमारे शरीर केवल स्मशान में जाकर के आने से सूतक से युक्त हो गया तो सीधा मुंह में हड्डी के पाउडर आ रहे, हड्डी का पाउडर आ गया और उससे हमने मंजन किया तो हमारा मुंह स्मशान बन गया कि नहीं, और सूतक लगा कि नहीं? इस पेस्ट को उपयोग करने से हमेशा सूतक रहेगा घर में। चमड़े की चप्पल को घर में रखते हैं तो हमेशा सूतक वाला घर है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो सूतक प्रारंभ हो जाता है ना? क्यों? उस शरीर के कारण से अशुद्ध है वो शरीर, इसलिए सूतक आ गया। तो चमड़े का चप्पल मरे हुए जीव के शरीर का ही अंश है ना, तो फिर सूतक कैसे नहीं? घर में अपवित्र है वो। चमड़े की वस्तु रहना घर में, ये सूतक ही है, ये नहीं रखना चाहिए। कौन कौन से रखना? चप्पल नहीं रखना और पेस्ट नहीं रखना और एक वस्तु उस प्राणियों के खून से, हाँ, प्राणियों के खून से नेल पॉलिश बनता है, इसको नहीं लगाना। मेहंदी लगाना ठीक, वनस्पति है वो शाकाहार है। खून से बना हो तो मांसाहार हो गया। महाराज मांसाहार क्यों कह रहे हो? उसको खाना है क्या? खाते नहीं, लेकिन जब यहाँ पर अंगुली पर लगा देते हैं और भोजन के लिए बैठ जाते हैं तो पेट में भी तो जाएगा वो। ये नेल पॉलिश न कभी स्वयं लगाना और न अपने बच्चों को लगाना। छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते ही शौकीन हो जाते, माँ बाप उसको लगाने लगते। लगाते हैं? नहीं लगाते। नेल पॉलिश नहीं लगाना। और क्या नहीं लगाना? लिपस्टिक नहीं लगाना। लिपस्टिक तो वहीं लगाया जाता है जहां से मुंह में अंदर जा सकता है, तो लिपस्टिक भी खून से ही बनता है, रक्त से बनता है वो। और ये रक्त कत्ल खाने के भैंसों के बकरी भैंस जो भी प्राणी कटते हैं उनका खून है वो। कैसे लगाएंगे लिपस्टिक यहाँ? बहुत गलत है। ससा भी कटता है, ससा खरगोश आंखें निकाल करके करते, खरगोश की आंखें निकाल कर जोर जबरदस्ती में उसकी हिंसा कर हत्या करके ये सब सामग्रियां बनाई जाती है, प्रसादन सामग्री। कुछ नहीं, क्या शरीर को सजाना? शरीर तो वैसे ही सुंदर है। आप लोग देवताओं से सुंदर लगते हैं, फिर पाउडर की क्या जरूरत है? लिपस्टिक की क्या जरूरत है? नेल पॉलिश की क्या जरूरत है? उसको लगा करके और बिगाड़ देते हैं शरीर को। आप लोग गौर से देखो, जो इसको बहुत लगा चुके हैं उनके ओठों को देखो, और बहुत नेल पॉलिश लगा चुके हैं उनके नखूनों को देखो कैसे लगते हैं। कैसे लगते मालूम, राक्षस के नाखून रहते हैं ना चमकते हुए ऐसे, अच्छे नहीं लगते हाँ, आर से ज्यादा पैसा उसको लग रहा है, देखो ना। और कौन कौन सी चीजें छोड़ना है? शैंपू, शैंपू वो तो शैंपल है नरक जाने के लिए। शैंपू, शैंपू का भी उपयोग करना नहीं, क्योंकि शैंपू में भी प्राणी जनित वस्तुओं को डाल करके ही बनाया जाता है, शैंपू का उपयोग नहीं करना। और कुछ साबुनों में चर्बी डलता है, ऐसा लक्स वगैरह जो होते हैं, कुछ अच्छे साबुन भी हैं, सोच करके नाम को देख करके खरीदना चाहिए। अच्छे साबुन कौन से हैं? मेडिमिक्स। अच्छे साबुन कौन सा है? मेडिमिक्स। उसका एक चार्ट है, देखो। वो रामदेव बाबा की दुकान यहाँ पर कोल्हापुर में भी होंगे, वहां से जाकर के चाहे साबुन खरीद लो, चाहे मंजन खरीद लो, दंत मंजन, चाहे कोई वस्तु खरीद लो, वहां पर शाकाहार की वस्तुएं मिलेंगी। आपको कहाँ खरीदना है देखो, देखो ये नियम बना लो, हर कहीं किसी दुकान में जाकर के एकदम से नहीं खरीदना, जरा दूर पड़ जाए खरीदने के लिए दुकान, कोई बात नहीं, लेकिन पाप नहीं लगना चाहिए, हमको नरक गति का बंद नहीं होना चाहिए। दूर जाना पड़े तो दूर जाएं, लेकिन उस दुकान में जाएं जहां पर शाकाहार की सभी वस्तुएं मिलती हैं। तो ऐसी दुकान है क्या नहीं? कहाँ है? आप लोगों को मालूम है रामदेव का दुकान है क्या नहीं? रामदेव बाबा का, हाँ, उनका उनका खरीद लो, बहुत अच्छा है, शाकाहार की वस्तुएं मिलेंगी वहां। हाँ, शैंपू भी है, तो वहां पर धोखाधड़ी नहीं है। हाँ, धोखाधड़ी नहीं है वहां पर, धोखा नहीं हो सकता, जो विश्वास के साथ बना करके बेचते हैं वहां पर धोखा नहीं हो सकता, और ऐसी वस्तु से हमको पाप नहीं लगेगा, वैसी वस्तु खरीदना, खरीदेंगे ना। हाँ, एक ऐसी दुकान में ही खरीदने का नियम ले लो, नियम ले लो, लेंगे ना। हाँ, ले वो देखेंगे कैसा लेंगे, हाथ उठा कर क्या के यूं यूं करते हुए हाँ लो, हाथ उठा लो, हम उसी दुकान में से वस्तु खरीदेंगे जहां पर शाकाहार की वस्तुएं बिकती हैं। उठा दिया हाथ, कुछ लोगों को ध्यान में नहीं आया अभी किधर किधर देख रहे हैं, सब लोगों ने उठाया था, इधर हाँ ठीक है। हाँ हाँ, क्या होता है? हाँ, नॉन रजिस्टर क्या लगाते हैं उसमें? हाँ, ये जो टिकली लगाते हैं इसमें भी दोष है, यहाँ लगा लगा करके यहाँ चमड़ी सफेद पड़ जाती है और गल जाता है चमड़ी, मांसाहार होता है, उसको भी नहीं लगाना चाहिए। टाइम हो गया 10:15 बज गया, अब ये साधु समाधि, साधुओं की समाधि में भाग लेकर के साधु महाराज कैसे समाधि मरण करते हैं, क्या क्या छोड़ते हैं, कैसे मंदकषायी रहते हैं, कैसे निष्प्रह रहते हैं, संसार शरीर भोगों से कैसे विरक्त रहते हैं, इसकी शिक्षा साधुओं के पास जाने से ही मिलती है। जहां पर भी साधुओं का समाधि मरण हो रहा हो वहां पर जाकर के देखने से हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, हमको कैसे मरण करना चाहिए इसकी शिक्षा मिलती है। तो जाना चाहिए, साधुओं का समाधि मरण, साधु समाधि मरण, पर आप लोग भावना भा रहे हैं, साधु जैसे समाधि मरण करते हैं वैसे ही समाधि मरण करने के लिए हम भावना भाते हैं, ऐसा कहकर अपने आत्मा को अभी से आप संस्कारित कर रहे हैं। अंत में जाकर के यही करना है, क्या करना है, सभी परिग्रह, सभी मोह, सभी विकल्प, सभी राग द्वेष, हर्ष विषाद, शत्रुता, मित्रता, सभी संबंध तोड़कर मैं एक अकेला आत्मा हूँ, भगवान के समान निर्मल हूँ, पवित्र हूँ, निर्विकल्प हूँ, स्वच्छ हूँ, सरल हूँ। ऐसा भाव भाते भाते अंत में मरण करने का नाम साधु समाधि मरण है। यह मरण सबको मिलना चाहिए, यही दुर्लभ है, ये देवों को नहीं मिलता। प्रतिमाधारी मरण, प्रतिमा को धारण करके मरण देव नहीं कर सकता, कोई भी देव, ये मनुष्य गति में ही सिद्ध होता है। श्रावक बाल पंडित मरण कर सकते हैं, मुनि पंडित मरण कर सकते हैं, मनुष्य गति में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य गति को छोड़कर अन्य गति में तो ये सब सुविधाएं नहीं है। ये साधु समाधि मरण है, यह साधु समाधि मरण अपने जीवन में आ जाए, ऐसी उत्कृष्ट भावना रखो और धर्म की साधना करो, निश्चित रूप से आपको कल्याण होगा। महाराज।